कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
परमात्मा की तलाश इसीलिए की जाती थी कि वो परिवर्तन कर सकता है, सुखी कर सकता है। लेकिन वो भगवान कौन है, कैसा है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए वो कौन सी मंत्र जाप, कौन सी विधि है, उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने अपनी थ्योरी से वेदों और सदग्रंथों के विरुद्ध अपने पुस्तक बनाकर, उपनिषद बनाकर जनता को भ्रमित कर दिया। उसी अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर खुद आते हैं, स्वयं आते हैं कबीर जी, और हमारे जैसे दास को फिर उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से प्रेरित करके अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश पहुंचाते हैं। ये तो आ गया ओढ़ इन देवताओं और राक्षसों के गुरुओं का। अब ये नकली महर्षि और दिखाते हैं। यहां पर एक दयानंद जी पाक रहा था, जिसने क्या का वीरानी कह कह का भी नहीं पता, और महर्षि की पदवी पा रखी, वीरण कितनी यूनिवर्सिटी बना रखी इनके नाम से। अभी ज्ञान होगा जब देखियो, इसके नाम से भी नफरत हो जाएगी, इतना घटिया सिद्धांत इसने अपने सत्य प्रकाश में लिखा हुआ है। पहले अशिक्षित समाज था, इस सत्य प्रकाश को गहनता से किसी ने देखा को नहीं, बस दो चार लाइन पढ़ने रख दें, न्यो सोचे भाई महापुरुष का लिखा हुआ है, हमारी समझ दबार की बात से। मानते ये थे बहुत अच्छा शास्त्र है, इसमें नरा गोबर भर रखा, ज्ञान ठोक रखा, सारी गलत छोरियां भरी हुई। पुण्यात्माओं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है इसमें ऋषिदानंद के साथ, और हम भी इनसे बहुत प्रभावित थे, आदर की दृष्टि से इसके नाम को देखते थे, इनकी महिमा से, इसकी फोकट महिमा से बहुत प्रभावित था ये दास। लेकिन जब देखा कि महिमा तो उसी के आधार पर थी कि इन्होंने बहुत अच्छा शास्त्र हमें बनाकर दे रखा, वेदों का निष्कर्ष निकालकर सत्यार प्रकाश बनाकर दिया, तो उनका एहसान था हमारे ऊपर के इतने महापुरुष ने इतने जटिल समस्या को सुलझा करके सत्यार प्रकाश में सिंपल बनाकर हमें सच्चाई दे दी। अब देखा कि उसने वेदों के विरुद्ध सारा उल्टा ठोक रखा, वेदों के नाम पर भ्रमित कर दिया समाज को, जबकि वेद हमें सत्य बताते हैं, इनका सत्यार प्रकाश बिल्कुल व्यर्थ सिद्धांत बताता है। अब देखिएगा, यह है सत्यार प्रकाश। यह है महर्षि दयानंद जी का चित्र, महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका जन्म सन 1824 और मृत्यु सन 1883, यानी 59 वर्ष ये जीवित रहे, फिर बीमारी के कारण की मृत्यु हुई। सत्यार प्रकाश है, देखिए इसमें क्या लिख रखा है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे, वेद आदि नाना प्रकार के सत ग्रंथों के आधार से इसकी रचना किसने की, श्रीमत परमहंस परिवराज काचार्य। देख कितनी बड़ी महिमा लाई है महर्षि का, गए श्री परम श्रीमन श्रीमत परमहंस परिवराज का आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक हैं यति मंडल, वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीना नगर, पंजाब से। और ये छपा कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसमें देखना सातवें समोल्लास के में 155 पृष्ठ पे। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दानंद जी से हम बहुत प्रभावित थे, और जब तक हम उन सदग्रंथों को आंख अपने आप नहीं देख लेंगे कि वेद क्या बताते हहैं और ये ऋषि उन्हीं की आड़ में हमें क्या ज्ञान देंगे, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे इनका रंग घना घने दिनों से चढ़ा हुआ है। इस दास का उद्देश्य यही है कि आप दोनों की तुलना करें, सदग्रंथों की और साथ में इन ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं के सिद्धांत की। तो यदि ये वेदों से नहीं मिलती है इनकी थ्योरी, इनका सिद्धांत, इनके विवेचन, इनका ज्ञान वचन, तो इनकी थ्योरी कभी भी ठीक नहीं है। इसको त्याग देना चाहिए, इनको एक तरफ डाल देना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब कई ये कहते हैं कि आपके महाराज जो है, आपके गुरुजी संतों की निंदा करते हैं, और महर्षि दानंद बड़े अच्छे समाज सुधारक थे, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है, ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करूं। दास तो सत्य कहता है, सत्य निंदा नहीं होती, ये तो परोपकार का काम होता है, किसी किसी पर मेर परमात्मा करता जो सत्य कह सकता है। जीव की औकात नहीं है वो सत्य कह दे, परमात्मा अपनी समर्थता अपनी शक्ति से और ये सत्य अपने समाज भगत समाज तक पहुंचवाता है। अब जैसे सरकार ने एक बार नकली नोट पकड़े थे 500-500 के, वो डुप्लीकेट नोट थे, सरकार ने उनकी जनता को समझाने के लिए दोनों दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों में भी छाप छाप करके बताए थे कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी, ना जाने वो ठग कितने लोगों को ठग ले जाते। तो ऐसे ही दास एक महापरोपकार कर रहा है कि सदग्रंथ रूपी ओरिजिनल नोट आपको दिखा रहा है साथ में, और इनका डुप्लीकेट लेख भी आपको दिखा रहा है कि ये गलत कह रहे हैं, हमारे वेद सत्य कह रहे। इतना सा दास का कर्तव्य है, इसने चाहे निंदा कहो, बुद्धिमान लोग इसको परोपकार कहेंगे, स्वार्थी इसको निंदा कहेंगे या अनजान कहेंगे जिन्होंने हमारे उद्देश्य का पता नहीं। अब इस महर्षि दानंद की एक पोल ने कोठी खोलने के लिए एक अज्ञान को हटाने की कोशिश करते हैं, वहां पर तीन अज्ञान पाते हैं, तीन बेसलेस सिद्धांत मिल जाते हैं, तो उन तीनों को साथ क्लियर करना पड़ता है। स्वामी दानंद जी का एक तो सिद्धांत यह है, सातवें समोल्लास के प्रारंभ में किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा ईश्वर ब्रह्म एक है या अनेक है? वेदों में तो अनेक ब्रह्म लिखे हैं, अनेक ईश्वर लिखे हैं। स्वामी दानंद जी कहते हैं कि नहीं, किसी भी वेद में अनेक ब्रह्म ईश्वर नहीं लिखे, ये तो लिखा है कि एक ही ब्रह्म है। और आप पे अपनी थ्योरी को, अपने ही सिद्धांत को आप ही खंडन कर रहा है, अपने विचारों को आप ही खंडन कर रहे हैं कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। परब्रह्म का अर्थ दो मेल, दो ब्रह्म, परब्रह्म से मेल अर्थात परब्रह्म का अर्थ दो ब्रह्म सिद्ध करता, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, जैसे दादा और परदादा। पुण्यात्माओं ये सत्कर मानना, ऐसा बेहुदा लेख या तो कति अज्ञानी लिख सके, अपने शब्दों से को आप ही, अपने विचारों को आप ही खंडन कर रहा है दूसरे पृष्ठ पे, और या किसी नशे में से ग्रस्त प्राणी ऐसा लिख सकता है जो उसने पिछले पृष्ठ पे नहीं पता तेने के लिखा है। यहां देखिए सप्तम समोल्लास है, ये सातवां समोल्लास प्रारंभ, इसके यहां क्या लिखा है कि किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर देते हैं स्वामी दानंद जी नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब देखो ईश्वर माने ये ब्रह्म, ब्रह्म को ईश्वर बोलते हैं, ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। ये देखिएगा इन्हीं का प्रथम समुल्लास सत्यार प्रकाश में और पृष्ठ 15 पे क्या लिखा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब यहां फिर आते हैं सातवें समुल्लास के प्रारंभ में कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक है, इस बात को तू मानते हो या नहीं। स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म कहते ईश्वर इन्हीं के शब्दों में, अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, यानी अनेक ब्रह्म नहीं है एक ही ब्रह्म है, किंतु यह तो लिखा कि ब्रह्म ईश्वर अर्थात ब्रह्म एक ही है, क्योंकि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो हम ईश्वर कहें या ब्रह्म कहें एक ही, यानी ब्रह्म एक है। और स्वयं ही यहां देखो 151 पर और 154 पर किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है वा निराकार, उत्तर स्वामी जी का निराकार। 155 पे ही इस खंडन कर रहे हैं निराकार का, साकार सिद्ध कर रहे हैं। अब यहां इसके तीन सिद्धांत फेल होंगे, दयानंद जी के तीन सिद्धांत यहां फेल होंगे, व्यर्थ होंगे, जो झूठे सिद्ध होंगे। एक तो ये कि ब्रह्म अनेक हैं, आप पर सिद्ध कर रहा है परब्रह्म शब्द बोला है, और दूसरा ये है कि ईश्वर निराकार है तो आप पे साकार सिद्ध कर रहा है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना ये लाभ है। अब 155 पर पढ़ लो आप, 154 पर आपने पढ़ लिया परमात्मा निराकार है, स्वामी जी कह रहे हैं। अब कहते हैं प्रश्न किया किसी ने परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं, स्वामी जी ने उत्तर दिया दयानंद जी ने करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा, उत्तर स्वामी जी कहते हैं पाप नहीं छुड़वाएगा नहीं। प्रश्न तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना जब पाप पे नहीं कटता, तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या है, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उनके करने का फल अन्य ही है और लाभ है। प्रश्न क्या है, उत्तर स्वामी जी देते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, जय हो, मैं ऋषि दयानंद की। 154 पे तो कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, 151 पे कह रहे हैं कि अनेक ब्रह्म नहीं है एक ही ब्रह्म है, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि उपासना आदि स्तुति आदि करने से पाप नष्ट नहीं होते। एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, दादा और परदादा दो, अन्य ब्रह्म परब्रह्म नेक्स्ट दो से दोगे। एक तो वो थ्योरी इनका फेल हुई, वो सिद्धांत इनका आप पे खंडित कर दिया इन्होंने कि ब्रह्म एक है अनेक नहीं, या अनेक बोल दिए, परब्रह्म अनेक ब्रह्म का बोधक है। और जैसे कोई कहे कि औषधि खाने से रोग नष्ट नहीं होता, किसी कोई प्रश्न करे क्या औषधि खाने से मेडिसिन खाने से रोग नष्ट होता है, उत्तर मिले किसी से कि नहीं औषधि खाने से रोग नष्ट नहीं होता, तो भाई औषधि खाने का फिर किस लिए खाएं औषधि, उत्तर मिले कि उससे और लाभ होता है पहलवान बन जाएगा, क्या वो वैध हो सकता है, क्या वो उसका सिद्धांत ठीक है। अब कोई कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, उत्तर मिले नहीं, साबुन कपड़े का मैल तो नहीं छुड़वाएगा लेकिन उसको मजबूत बना देगा। तो वो कैसा आदमी होगा, उसने सपने में भी कितना साबुन नहीं देखा, प्रयोग तो करना बहुत दूर है। तो वो बकवादी आदमी है, बेमतलब की बकवास करता है, उसने ना साबुन देखा, कता कती बौड़ी बूझ से और ना नशे में, दो तरीके। ये शब्द कोई कह सकता क्या, उपासना से भगवान पाप काट दे नाश कर देगा? वो कहता नहीं, नहीं करेगा, और लाभ होगा, उससे मेल हो जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे एक पापी आदमी पाप कटे नहीं और भगवान मिल जाएगा उसको, और तेरा गजब हो गया। परमात्मा जब में लगा जब वो निर्मल हो लेगा, सफाई हो, साफ हो लेगा, अंतःकरण में कोई मलिनता रहे नहीं की, तो भगवान के निकट हम पहुंचेंगे। अपुण्यात्मा साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार का अर्थ होता है आमने सामने दोनों साकार में बात करें। अब स्वामी जी के दो सिद्धांतों ने आप पर फेल कर दिए कि एक निराकार बोल रहे हैं, आगे साकार सिद्ध करें, साक्षात्कार हो जाना और उसे मिलन हो जाना। मिलन निराकार तक क्या होगा? यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उपासना के बाद फिर उससे मेल के होगा, तो वैसे ही अभेद है हमारे से, वो तो मिला हुआ है सर्वव्यापक होने से उन्हीं के सिद्धांत अनुसार। और फिर परब्रह्म से मेल उपासना के बाद हुआ तो इसका मतलब एक देशीय भगवान सिद्ध हुआ, और वो नहीं मानते कि भगवान एक देशीय है, एक स्थान पर है। जबकि वेद प्रमाण करते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र 96 और मंत्र 16 से लेकर 20 तक में परमात्मा की पूरी स्थिति बताई है, और वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वो एक देशीय है। और यहां भी अपने अन्य रूप धारण करके सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी वो परमात्मा यहां आता रहता है। अब उनके चार सिद्धांत, तीन सिद्धांत तो फेल हो गए कि भगवान एक देशीय वो कहते नहीं है, और यह प्रसिद्ध कर रहे हैं पर परब्रह्म से मेल उपासना के बाद हुआ तो वो कहीं अलग स्थान पर है, जो साधना करने से उसके पास हम पहुंचे और साक्षात्कार होना, साकार सिद्ध हुआ। अब रही बात कि पाप नाश नहीं करता। देखो पुण्यात्माओं, जैसे कोई मेडिसिन बुक है, मेडिसिन की औषधि की पुस्तक है जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, उसमें औषधि के गुण लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये औषधि इस रोग का नाश करती है, बिल्कुल सत्य है। उसके विपरीत कोई बताता है कि ये औषधि रोग नाश नहीं करती है और पहलवान बना देती है। जब रोग नहीं कटेगा किसा पहलवान बनेगा, वो मर्या पाओगा। तो ऐसे ही जब पाप ही नहीं कटे तो भगवान किसा मिलेगा उसने, वो नहीं मिल सकता। वो पाप है उसने सीधा कर देंगे, कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई और बिजली गिर जाएगी। अब इसके स्वामी दयानंद जी के जैसे हमारे पवित्र वेद हैं, और वेदों को स्वामी दयानंद जी सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा वो बिल्कुल सत्य है। और वेदों में वेद क्या है, परमात्मा के गुण बताते हैं। परमात्मा के गुणों में जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े का मैल काट देता है, घोर मैल को अभी नाश कर देता है। और इसके विपरीत कोई बता रहा है कि साबुन मैल नहीं काटता, कपड़े को मजबूत करता है, तो वो उसने साबुन के गुणों का ज्ञान नहीं, वो परिचित नहीं है, वो नकली आदमी है, वो डुप्लीकेट महर्षि है, वो शास्त्रों के जानकार नहीं है। अपने पवित्र वेद भगवान के गुणों से परिपूर्ण है, भगवान के गुणों का ज्ञान हमने वेदों से ही हुआ। और वेद में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को काट सकता है, ऋग्वेद में भी सैकड़ों प्रमाण है, लेकिन यजुर्वेद में इकट्ठा ही एक ही श्लोक में, दोहे में, एक ही मंत्र में परमात्मा ने 6 बार लिख रखा है। तो उसने अगर एक बार लिखा होता तो स्वामी जी गोलमोड़ कर जाता। जैसे साकार परमात्मा को इन्होंने निराकार अपनी थ्योरी के आधार से वेदों के अनुवाद भी बदल डाले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, और इन्होंने अग्नि का अर्थ वहां पर हे बिजली हे लोगो जैसे मैं हवि कर करा के और गोलमोल कर दिया। लेकिन उसी में तुरंत लिखा विष्णुवे त्वा सोमस्य तनोरसी, उस परमेश्वर का तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी और शरीर है, यानी वो अतिथि रूप में यहां आता है और अपनी महिमा का प्रचार सत्ज्ञान अपने आत्माओं तक पहुंचाता है। अब पुण्यात्माओं देखिएगा, यजुर्वेद महर्षि दानंद जी के करकमलों द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये इन्हीं आर्य समाज वाले प्रतिनिधि सभा के द्वारा ये प्रकाशित है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, महर्षि दान सरस्वती कृत यानी महर्षि दान द्वारा किया गया है इसका अनुवाद। अब देखो ये 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे और ये 13वां मंत्र है। इसकी संस्कृत यहां पर है, अनुवाद आगे किया है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य, यानी इसका यहां देखिएगा 242 अनुवाद स्वामी दयानंद जी ने स्वयं ही अपने करकमलों से किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब मित्र लिख दिया यहां पर पुण्यात्मा, इसका उद्देश्य क्या था? विचलित करूं भगत समाज को कि ये सच्चाई से दूर रहें और तेरे सत्यार प्रकाश वाली उस अज्ञान की पोल ना पाट जाए। अब यहां इसने हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया। अब जैसे इस दास ने पहले यही अज्ञान जो सत्यार प्रकाश में भरा हुआ है इसका उल्लेख समाचार पत्रों और सीडी भर के समाचार पत्रों में लेख लिखकर प्रकाशित किया था कि महर्षि दानंद जी का सिद्धांत गलत है कि वो कहते हैं पाप नाश नहीं होता और वेद कहते हैं पाप घोर पाप को भी परमात्मा नाश कर सकता है। तो हमने ये जो कहते ये फोटो कॉपी टाइप करके और समाचार पत्रों में ऋषि दानंद जी का अनुवाद दिखाया था। तो उन्होंने प्रतिउत्तर दिया था इनके अनुयायी जो आचार्य लोग हैं जो सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, दुनिया को भ्रमित करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। उनका उत्तर था कि रामपाल अज्ञानी है, उसने संस्कृत नहीं आती, वो क्या जाने वेदों के बारे में, और जिस मंत्र के विषय में ये कह रहा है कि उसमें लिखा पाप काट देता है वो तो कहते मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं लिखा। उनका उद्देश्य ये था बात ना रोड़ा रड़ा दो और कोई ना सुने रामपाल की, और महर्षि दानंद की ततूती बोल ही रही है, सभी प्रभावित हैं कि रामपाल क्या जाने हो तो संस्कृत नहीं जानता है। उन्होंने कई अटकड़ लाई ताकि इस बात ने रोड़ा रड़ा जा, परंतु अब समाज बहुत शिक्षित है, बुद्धिमान है और उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया हुआ। अब देखिएगा मित्र माने वो स्वयं कहते हैं परमेश्वर। अब देखिएगा यही सत्यार्थ प्रकाश, इसमें स्वामी जी ने स्वयं ही अब प्रथम समोल्लास में लिखा है कि मित्र का अर्थ परमात्मा। ये देखिएगा ये प्रथम समोल्लास है पृष्ठ नंबर 18 पे, ये सत्यार्थ प्रकाश, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो पुण्यात्मा जी हम इसको मित्र ना बोल करके परमेश्वर बोलें तो अच्छा रहेगा। इनके अनुवाद को ये देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, क्योंकि स्वयं कहते हैं मित्र जहां लिखा हो परमेश्वर समझें आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, दान देने वाले के एनस्य माने अपराध यानी पाप, एनस्य माने पाप समझो, क्योंकि इन्होंने खुद अनुवाद किया एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, नाश करने वाले, एनस्य माने पाप। तो यहां आप दान देने वाले के हे परमेश्वर, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, अवैधनम माने विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने पाप के अपराध के, अवैधनम माने विनाश करने वाले हो यानी छुड़ाने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, असी माने हो। पितर कर्तस्य, पिता के किए हुए एनस्य माने विरोध आचरण यानी पाप ही समझो यहां पर, क्योंकि एनस्य माने पाप या अपराध के, अवैधनम माने अच्छी प्रकार हरने वाले या नाश करने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए अनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। अनस्य अनस्य ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवजन माने नाश करने हारे हो, असी माने हो। विद्वान, जानता हुआ मैं यत जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्य माने सबके एनस्य माने दुष्ट आचरण यानी पाप के दूर करने वाले आप हैं। ओहो, अब वेद तनु कहें जाने में करूं चाहे अनजाने में हो गए, उन सब पापों के आप नाश करने वाले हो। स्वामी जी का सिद्धांत है कि पाप नाश नहीं होते, अक्षमा नहीं करता भगवान, और वेद कहते हैं भगवान घोर पाप का विनाश कर देता है। अब स्वामी दानंद जी अपनी थ्योरी बताते हैं कि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। एक यह बात तो इसकी सच्ची लगी उन्हें, ये यहां तो इसने ठीक लिख रखा है, लेकिन सत्यार प्रकाश में कोरी बकवाद वेद के विरुद्ध रखी है। कथित महर्षि, वैसे महर्षि के योग नहीं था, कति अनाड़ी सोच, यदि सत्यार प्रकाश के और थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूं, दाता तुला अंगली दबाओ कि युकित का महर्षि था ना। समाज सुधार के बारे में इसको ज्ञान चौथे अध्याय में लिखा है, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े गए, 48 वर्ष के पुरुष से ब्याह करना चाहिए, ये समय ब्याह का बहुत ही उत्तम है। तो ये समाज सुधार है, और किसी की आंख कह रही हो लड़की की उस लड़की से ब्याह ना करो, किसी का नाम पार्वती हो, गंगा हो, जमुना हो, उससे ब्याह मत करो, पूरे परिवार में किसी का एक का खांसी जुकाम बवासीर हो, पूरे कुल न छोड़ दो, सैकड़ों परिवारों से शादी मत करो, वारस समाज सुधारक। और फिर लिख रखा कि विधवा का विवाह मत करो, चौथे समोल्लास में। तो क्या करो, कहते वो पशु की तरह ऐसे किसी के पास जावर नए दूध हो आवे, अरे थरा नाश चाहिए ये भगवान, इस सिद्धांत को, और सत्यार प्रकाश नाम दे रखे इसका, आग लाग जा समाज में, जैसे की छुरी ने कुछ जानते पढ़ लेता, किसी की पत्नी, किसी का पति मारता पीटता हो, वह पत्नी किसी और पुरुष से जाकर गलत काम करके और उसकी छाती पर उसके बच्चे जान दे और उसके अधिकारी पैदा कर दे, ये नो शांति रखो, अपने परिवारों में और कुलों का उत्थान करो, ये तक कुल के कुल नाश हो जाएंगे इस तरह। हे भगवान, अब यह थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा इसकी झलकना, तो आने वाले समय में सोचेंगे रामपाल तो इसका दुश्मन था, काम का झूठ बोला करता है। अब सत्यार प्रकाश इन्हीं की कलम से दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये वही सत्यार प्रकाश है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण है, संविता महर्षि परमहंस श्रीमत परमहंस परिव्राजा का आचार्य महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक यति मंडल दानद मठ दीना नगर पंजाब से, और छपा कहां से है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दान मठ गुआना मार्ग रोहतक से। अब देखो चौथा समोल्लास दिखाता हूं आपको, तेरा गजब हो गया भगवान, और ये महर्षि की पदवी पा गए, समाज सुधारक का ढोल पीट दिया, इसके सिर का सिरा बांध रखा। ये देखो ये सत्यार प्रकाश है, 71 पृष्ठ पे है। भूरे नेत्र वाली इस लड़की से शादी मत करो, भूरे नेत्र वाली हो, गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली और हिमालय पार्वती आदि फिर काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। अब यहां देखो विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर 16 वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इस समय में जो 16, अब देखो ये आगे डिफाइन किया इसने को पूरा, इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, यानी 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का व्यक्ति हो ये नौ विवाह करे तो निकृष्ट माने घटिया, 18-20 की स्त्री और 30-35-40 वर्ष के पुरुष का मध्यम काम चलाओ जोड़ा है, और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय जय हो मैं ऋषि की समाज सुधारक की। अरे 24 साल की लड़की तो बेटी के तुल हो जाती है, यानी 48 साल के पुरुष के तुलना में बेटी के तुल हो जाती है। और ये नौका ये उत्तम समय है। पुण्य आत्माओं, इस आदमी ने ये बात लिखी, क्या ये हौसमा होगा? ये भांग पिया करता, मैं दिखाऊंगा भांग, क्योंकि इसका गेला ही दिखाना आवश्यक हो गया, नहीं तो भोली आत्मा आने वाले समय में कहेंगे कि मां रामपाल तो वैसे ही इनके पीछे पड़ा रहा करता, झूठ बोल गया होगा। इन्हीं की करकमलों से स्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं एक जो है ना दुर्भाग्य से एक बहुत ही ज्यादा अवगुण करने लग गया, मैं भांग पीने लग गया। तो ऐसी थ्योरी भांग पी के ही लिखी जा सकती है, वैसे नशे में ही लिख सकता है। 24 वर्ष की लड़की 48 पुरुष के पुरुष का विवाह उत्तम हो तेरा गजब। मनु जी ने 4 आश्रम बनाए, 4 स्टेट सतिथि बनाई मनुष्य के जीवन की, 25 तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 तक गृहस्थी, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद फिर संन्यास ले ले। तो अब इसका इसने सिद्धांत बनाया 24 की स्त्री 48 का पुरुष जब ब्याह करवावे वो उत्तम समय। अच्छा आगे देखना आपको दिखाता हूं कि चौथे समोल्लास में कति लास्ट में लिखा है, यदि किसी का पति मारता पीटता हो और इसी तरह यदि किसी की पत्नी झगड़ालू हो, उस पत्नी ने छोड़ दे और किसी और के पास चला जा, पुण्यात्मा मुझे शर्म आ रही है, बहन बेटी भाई बैठे हैं, लेकिन यह मजबूरी होगी इसके इस अज्ञान को हटाने के लिए गोबर में हाथ मने डालने पड़ रहे हैं, नहीं मेरा शौक नहीं था ये बातें बताने का। अब यहां देखो विवाहित स्त्री कहते हैं यदि किसी का पति किसी काम, मौखिक बताता हूं, यदि किसी का पति धन कमाने के लिए दूर देश चला गया प्रदेश में और 3 वर्ष ना आवे तो वो किसी और पुरुष से संबंध सपात नियोग कर ले और उसके नाम के बालक जा मिले, वो आवे जब वो बच्चे उससे के को आओगे उससे का गोत्र होगा ब्याह वाले पति का, अरे तरा गजब। ये समाज सुधार है, ये तो नाश है समाज का। यहां देखो ये चौथा समोल्लास पृष्ठ नंबर 102 पे विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया है तो 8 वर्ष, यदि विद्या ग्रहण करने विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 और धन आदि कमाने यानी रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख कर उसके पश्चात नियोग करके संतानों उत्पत्ति कर ले, वह जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। अब सुन लो इसके बोल महर्षि दयानंद के अपने 3 वर्ष कोई ना आवे धन कमाण गया है और विद्या के लिए गया तो 6 वर्ष और वही पर धर्म प्रचार के लिए गया तो 8 वर्ष तक बाट देखे और फिर उसी के नाम के पुत्र जान दे किसी और से। आगे देखो और तेरा गजब हो। जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली होवे तो सदैव माने तत्काल उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानों उत्पत्ति कर ले। अरे वाह। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतानों उत्पत्ति कर ले। इसी प्रकार स्त्री यदि पुरुष दुखदायी हो तो वह उस पति न छोड़कर दूसरे से नियोग से संतानों उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी यानी हकीकी संतान कर ले। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करो। और औरस और विवाहित पति से पुत्र देखो, औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के पुत्र दाय भागी होते हैं। अब ये क्या कहता है कि जैसे विवाहित पति से जो संतान हुई वो पति की संतान कहलाती है, इसी प्रकार कहते हैं किसी और से गर्भ धारण करवा ले वह भी उस पति की संतान और उसकी हकीकत हकदार होगी। जय रुद्र जय हो, मैं ऋषि दानंद की तेरे समाज सुधार की जय हो। ये तो एक झलक दिखाई है, इसमें और भी नरक और डंगा व्याख्या है कि विधवा का विवाह नहीं करना चाहिए, वह बस नियोग कर ले किसी और पुरुष के पास जाकर। अब किसी ने पूछा भी नियोग और विवाह में क्या अंतर है। कहते हैं अगर विधवा का दोबारा विवाह कर दिया तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं वो इस वैसे नियोग 11 पुरुषों से कर सकती है। रत्रा गजब भैया, अगर विधवा का विवाह कर दिया उसे तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, और ये वो 11 पुरुषों के साथ गलत संबंध कर ले उस तो वह ठीक रहेगी। ये फिर दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा योड़ंगा, निजा जच्चा कोई ना किया भी लगती होगी उसने। ये वही सत्यार प्रकाश है और चतुर्थ समुल्लास है। ये पृष्ठ 96-96 पे। अब किसी ने प्रश्न किया कि विधवा का पुनर्विवाह में क्या दोष है। उत्तर देता स्वामी जी, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाना यानी कम हो जाएगा आपस में प्रेम, क्योंकि जब चाहे पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। जब स्त्री व पुरुष पति मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब पूर्व पति के व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना यानी दूसरा विवाह करने से हानि होंगी। तीसरा, बहुत से बद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थों छिन्नभिन्न हो गए। अच्छा आगे चौथा जो हानि है पुनर्विवाह से, पतिवर्त्य और सत्रीवर्त न धर्म नष्ट होना। अरे पुण्य आत्माओं देखो, अब क्या बताया है स्वामी जी ने कि यदि किसी की पत्नी मर्गी वो दूसरे औरत से अगर वो पुनर्विवाह करता है तो उसका पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि कोई पत्नी का पति मर गया, विधवा होगी, वो किसी और से ब्याह कर लेगी तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा आगे देखो, वो नियोग कर ले। 101 पृष्ठ में चौथे समुल्लास में, एक स्त्री या पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त तो पतियों का क्या नाम होता है। जैसे इस मंत्र में 11 पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11 स्त्रियों तक नियोग कर सकता है। अब देखो, एक विधवा स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है तो उसके तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा नहीं, और अगर वह दूसरा ब्याह दोबारा किसी से शादी कर दी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। ये इसने मैं ऋषि कहोगे क्या कहोगे, ये तुम आप ही दोगे थोड़े दिन में इसको संज्ञा या क्या दोगे, यू के था ये समाज सुधारक था या समाज नाशक था। पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर और उस परमेश्वर से परिचित उनके महापुरुष, उनके अनुयायी, उनके बच्चे, उनकी आत्माएं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आज से लगभग 1717 में जन्म हुआ था संत गरीबदास जी महाराज जी का, छुडानी गांव, जिला जज्जर, हरियाणा में। और 1727 में कबीर परमेश्वर जी सत्यलोक से सहसरी आकर के अतिथि रूप में, मेहमान रूप में आते हैं, वेद भी प्रमाण करते हैं। और संत गरीबदास जी को आकर के 10 वर्ष की आयु जब गरीबदास जी की थी, उन्हें मिले थे खेतों में जब वो गायें चरा रहे थे। और फिर उनको एक करिश्मा दिखाया था कि कुंवारी गायें का दूध निकाला, उसके कमर पे हाथ मार दिया परमेश्वर कबीर जी ने, और कुंवारी गायों के थनों से अपने आप दूध निकलना शुरू हुआ। एक पात्र उसके नीचे रखा, वो भर गया दूध का तो अपने आप बंद होगी, और वो दूध परमेश्वर जी ने पिया, कबीर जी ने, और साथ में गरीबदास जी ने पिया। फिर गरीबदास जी की आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर के सब लोक दिखाए, सतलोक दिखाए, अपने सतलोक की महिमा दिखाई। और उसके बाद गरीबदास जी की आत्मा को जब वो मृत समझ लिए गए थे, नीचे शरीर को अग्नि चिता पर रखकर अग्नि देने लगे थे, तभी परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर की सब ब्रह्मांड दिखा करके, सारी सतीथि से परिचित करा के, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि, ब्रह्म की, परब्रह्म की, अपनी यानी कबीर जी की, पूर्ण ब्रह्म की सतीथि से परिचित करा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया था। चिता लगाने में अग्नि देने वाले थे, तभी वो परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी एकदम ऐसे शरीर में हिलचल हुई, जो बंधन ऊपर बांध रखे थे अर्थी के, वो अपने आप हट टूट गए और उठ कर चल पड़े। और ये महिमा की वाणी जो आंखों देखा हाल था, लोकोक्तियों के माध्यम से कबीर जी द्वारा दिए गए उस ज्ञान योग से बोलने लगे। अब गरीबदास जी इस दानंद जी से पहले के थे, ये तो सन 1824 में इनका जन्म, और परमात्मा कबीर गरीबदास जी महाराज ने 1717 में जन्म लिया, 1727 में परमात्मा मिल गए, और उस दिन से ये गुणगान सच्चाई का अब गाया, और ये ग्रंथ साहिब उसी समय से लिखा हुआ है। इसकी तो कदर नहीं जानी, क्योंकि हमने ये सोच रखा था कि जो सदग्रंथ हैं, वेदों और गीता जी को हम सदग्रंथ मानते हैं और पुराणों को, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, और कबीर जी और गरीबदास जी महाराज ये अशिक्षित, इस अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, यानी संस्कृत लिपि को नहीं जानते थे। ये कह करके इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं का दाव लगा रहा कि ये तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ये क्या जाने वेदों और गीता के बारे में, इसलिए जनसाधारण इन महापुरुषों को गहराई से नहीं पहचान सका। अब वो लाल कबीर परमेश्वर जी लाल, और उनके द्वारा दूसरे लाल बना दिए गए अपनी शक्ति से, उनकी पहचान इस दास को हुई, और ये दास ही आपको पहचान करा रहा है कि ये तत्व ज्ञान पहले ही कबीर वाणी में और कबीर परमेश्वर से परिचित उन संतों की अमृत वाणी में, जो कबीर जी द्वारा, कबीर परमेश्वर जी द्वारा वो तत्व ज्ञान उनको दिया गया था, उनके अंतःकरण में फीड किया गया था, वो ज्यों का त्यों बोला, वो सत्य आज भी सत्य है। पुण्यात्माओं, प्रसंग कहां से प्रारंभ हुआ था कि कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा, अपने यथार्थ ज्ञान को, सदग्रंथों के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको समझाने के लिए स्वयं ही आते हैं, और फिर हमारे उसके बाद हमारे जैसे दास की ड्यूटी लाकर के अपनी शक्ति से सब अपना परिचय वो खुद करवाते हैं, और क्या बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, एक पिता ऐसा है कि वो कमा रहा है, बेटा छाती पर बैठ कर खा रहा है, दमका रहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, एक ले रहा है एक दे रहा है, और कोई किसी का यहां पिता ना पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे के ऊपर, ये कर्ज आपका है, जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारा बाटा। यानी जैसे प्रसंग चल रहा था कि एक बेटा ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, बाप निंद्रा दुखी करे, वो पिछला संस्कार है। तो कबीर परमेश्वर के चरणों में आने के बाद धीरे धीरे प्रभु आपकी सच्ची तड़फ और लगन देख करके उस लेख को काट देगा। जैसे पीछे एक लोन, बहुत ज्यादा लोन ले रखा था किसानों ने भी, मजदूरों ने भी, सरकारी योजना के तहत, और वो वापस नहीं कर सके, तो सरकार ने माफ कर दिए, हल्के फुल्के गात हो गया उनका, एकदम बोझ हट गया। तो सरकार के पास पावर है, उसके पास काफी धन है, तो इसी प्रकार कबीर परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि आपके इस लेन देन को नष्ट करके और आपको फिर रीसेट कर देगा, बच्चे को चरणों में लेगा, वो आपको तंग नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे ऊपर आई जो आपदाएं अनजानपने में किसी भी कारण से, जैसे किसी भी कारण से अब बीमार हो गए, रोगी हो गए, पुराने समय में कहते हैं वैद्य ऐसे नब्ज देखकर बता देते थे कि 6 महीने पहले तूने ये वस्तु खाई थी जिससे तेरा ये रोग बना, कोई बात ना। अब रोग किसी भी कारण से हो गया, अब उसकी औषधि है तो रोग ठीक हो गया। तो ऐसे ही किसी भी कारण से किसी जन्म में हमारे से अपराध बन गया, वो तो बन गया, उसका दुख भी हो रहा है, तो अब औषधि है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासी, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। अब जो सदग्रंथ वेद बता रहे हैं वही कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी बता रही है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 24 से लेकर और 31 तक ये बताया है, कोई तो केवल देवताओं की उपासना अनुष्ठान करने करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी है जैसे मुंह पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमता है, कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, उस सब साधना जो कर रहे हैं अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। फिर 4:32 में लिखा है कि इस प्रकार की यानी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की साधना, बहुत प्रकार की परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी में यानी पूर्ण परमेश्वर की वाणी में, उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से उच्चारित वाणी में बहुत विस्तार से लिखी हुई है। फिर 34वें श्लोक में कहा कि वो जो परमेश्वर द्वारा कबीर वाणी में, सचिदानंद घन की वाणी में जो विस्तार से सत्य ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट भाव से उनको प्रसन्न कर, और वो फिर तत्वदर्शी संत तुझे उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, वो जो 4:34 में स्पष्ट कर रहा है गीताजी में कि गीताजी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है, इसको गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा बोले गए ज्ञान में, उनकी वाणी में, उस ज्ञान को तो किसी तत्वदर्शी संतों से पास जाकर समझ। तो कबीर परमेश्वर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत पर सतगुरु बनकर आए थे, फिर अपने संतों को वो ग्रंथ उन्होंने ज्ञान दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, इन महापुरुषों से दास परिचित है कि इनको परमात्मा मिले, और उन्होंने वही ज्ञान बोला है जो कबीर परमेश्वर ने अपने अमृत वचनों में बोला हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी यही लिखा है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। वो सतनाम कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो केवल एक, मुझ ब्रह्म का तो केवल ओम नाम है, इसका उच्चारण करते हुए और अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते हुए तक इसकी जो साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त कर होता है। और अपनी परम गति को वो सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुतम सिद्ध कर रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरे वाली साधना भी अनुतम है, अश्रेष्ठ है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सातवें स्थान में जाकर के सातवें स्थान यानी सदा रहने वाले उस सत्य धाम सतलोक को प्राप्त होगा। और वहां जाने के बाद फिर प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि वो मेरा ओम नाम है, इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा भस्मांतम शरीरम अमृतम, जब तू मर का शरीर छोड़कर जाएगा तब उस सतर की जो अमरता है उस सतर की जितना भी तुझे लाभ होना है वो मृत्यु के बाद मिल जाएगा। तो ऋषियों ने महर्षियों ने ओम नाम तो ले लिया, ओम नाम का जाप करने, ओम तो ब्रह्म का है। फिर 8वें गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविद समर्थ है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत् सत ये तीन मंत्र का जाप है, तीन प्रकार से इसको किया जाता है। अपुण आत्मा ओम तो ब्रह्म का जाप, तत् ये परब्रह्म का जाप है, ओम और तत् ये सांकेतिक शब्द है, तत् नहीं है, ये और शब्द है दास बताएगा। तो उन दोनों के मिल जाने से सतनाम बनता है। कहते हैं जब ही ये सतनाम हृदय धरो यानी सच्ची लगन से सच्ची तरफ से तुमने इसका सेवन शुरू कर दिया और भयो पाप को नाश, आपके प्रारब्ध में जो दुख आपको आए हुए हैं उनका विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास, जैसे बहुत हजारों टन सूखा घास पड़ा हो उसमें एक माचिस की सीख चसा कर जलाकर लगा दे, उस सारे को जलाकर सभा कर देगी, आएगी हवा उस राख को भी इधर की उधर ना जाने कहां पटके बिठा के खेतों में खाद बन जाएगी। तो ऐसे ही हमारे असंख्य जन्मों के पाप अलग लिखे हैं और पुण्य अलग लिखे हैं। अब परमात्मा उन सतनाम परमात्मा का ये सच्चा नाम इस दास से प्राप्त होकर लेकर के वैसे उसका नाम जाप करने से नहीं कुछ लाभ होगा, चाहे कितना करते रहियो, अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो सतनाम आपके उन पापों का नाश कर देगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जड़ी ढूंढ ली, ऐसी दवाई बना दी है कि फसल में जो गेहूं की फसल है या कोई और फसल है उसमें घास उग जाता है, खरपतवार पैदा हो जाता है, तो उस पानी के जल के सिंचाई के समय उस जड़ी को डाल देते हैं, वो घास घास को फूंक देती है, पौधा स्वस्थ रह जाता है। या जड़ी थी तो पहले लेकिन उसका अनुसंधान नहीं हुआ था, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब ये जड़ी परमात्मा ने पहले अपने सदग्रंथों में लिखी हुई थी, अब उसकी जो है ना यह खोज होगी, अब ये पापनाशक जड़ी आपको मिलेगी, इस दास के पास है, प्राप्त करो और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरु देव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, कबीर देव कबीर परमेश्वर इस काल लोक में आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल को समझाते हैं। परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। परमपिता परमात्मा काल के जाल को समझाने के लिए बहुत से उदाहरण हमें देते हैं, बहुत से एग्जाम्पल कोड करते हैं। पुण्यात्मा या कोई प्राणी भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये सुख सथल है ही नहीं। हम झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं। कौन सा झूठा सुख? परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, पुत्र हुआ उसकी खुशी में बहुत से जश्न मनाए, पार्टी की, गाने बजाने किए, लाखों रुपया खर्च कर दिया कि पुत्र प्राप्ति होगी। एक वर्ष के बाद पुत्र की मृत्यु होगी। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को तो सुख मान बैठा और इसी कारण से तो इसी झूठे सुख के लिपटा हुआ है, उस यथार्थ सुख से तो अपरिचित है। वो सुख कहां है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, और हम इस काल के जाल में कैसे फंस गए, ये सभी प्रश्नों का उत्तर कबीर परमेश्वर ने ही आके हमें बताया है।